महाभारत में घटना आती है, एक बार यक्ष और युधिष्ठिर महाराज के बीच में वार्तालाप होता है। वो यक्ष युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उसमें से एक प्रश्न था कि संसार में सबसे अद्भुत वस्तु क्या है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे बड़ा परम आश्चर्य होता है। तो युधिष्ठिर ने इसका बहुत एक्यूरेट आंसर दिया। वो कहने लगे, अहनि हनि भूतानि गच्छन्ति यमालम शेषाः स्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यमतः परम्। अहनि हनि अर्थात अहनि एवरीडे, अहनि हनि हर रोज। युधिष्ठिर महाराज कह रहे अहनि हनि भूतानि गच्छन्ति यमालम, हर रोज जीवात्मा जो है वो हजारों की लाखों की संख्या में कहां जाते हैं, यमालय अर्थात संयमनी, संयमनी अर्थात यमराज की कोर्ट। यमराज चार दिक्पाल में से एक है, चार दिक्पाल, दिक माने दिशा, दिक अर्थात दिशा। आप लोगों ने दिग्गज नाम सुना है, दिग्गज, दिग्गज हमारे जो भूमंडल है उसको बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर चार गज खड़े रहते हैं, बड़े बड़े, कॉस्मोलॉजी में आता है प्रभु। फिफ्थ कैंटो आपने पढ़ा है भागवतम, दो बार पढ़ लिया आपने। तो दिग माने एनीवे, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, शब्द ऐसा आया इसलिए, दिग माने दिशा। तो हमारे ब्रह्मांड में चार दिशा, चार विदिशा, चार दिशा कौन कौन सी आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो चार दिशा है, उसको दिक कहते हैं अर्थात दिशा। अभी दो दो दिशाओं के बीच में विदिशाएं होती हैं, विदिशा कौन कौन सी, नैऋत्य, ईशान, अग्नि, वायव्य, दो दो दिशाओं के बीच में विदिशा होती है। तो इन चार दिशा और चार विदिशाओं के अलग अलग पालक हैं, उसको उस दिशा को मेंटेन करने वाले मुख्य मुख्य देवता, उसमें से एक यमराज है। कौन सी दिशा के पालक हैं, संयमनी किस दिशा में है, सुंदर गौरांग प्रभु, संयमनी किस दिशा में है, संयमनी क्या है, संयमनी यमराज का, यमराज की कोर्ट है। जैसे हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट होती है, वैसे ये जो कोर्ट है यमराज की कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर है। जो केस सुप्रीम कोर्ट में फेल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज यदि ठीक से जजमेंट नहीं देता है तो यमराज देख लेते हैं फिर। तो संयमनी यमराज की कोर्ट है, और वहां कौन बैठते हैं सबका हिसाब किताब रखने के लिए, चित्रगुप्त। यमराज की सभा में उनके असिस्टेंट है चित्रगुप्त, एंड ही इज अ वेरी एफिशिएंट मैन, ही इज नॉट अ मैन, वो देवता है, मनुष्य नहीं है। और ये चित्रगुप्त का नाम चित्रगुप्त क्यों है, उसका संधि विच्छेद करिए, चित्र प्लस गुप्त। ये चित्रगुप्त जो है वो सबके हिडन कैमरा के द्वारा फोटोग्राफ लेते हैं, गुप्त रूप से चित्र लेते हैं सबके, अर्थात वो सबके कार्य नोट करते हैं। कोई व्यक्ति एक रूम में दरवाजा बंद करके या अकेले में कुछ काम कर रहा है तो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो मूर्खता है क्योंकि चित्रगुप्त देख रहे हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि सभी देवता जैसे वायुदेव सभी जगह व्याप्त हैं, तो वायुदेव हमारे कर्मों के साक्षी होते हैं, अग्नि हमारे शरीर में है वो हमारे कर्मों के साक्षी होते हैं, चंद्रमा जो मन के, मन को नियंत्रित करने वाले हैं वो भी हमारे कर्मों के साक्षी हैं, तो ये सब कर्म के साक्षी हैं हमारे। तो चंद्रगुप्त को सब पता चलता है, हाँ चित्रगुप्त को, चित्रगुप्त सब नोट करते हैं हमारे एक एक कार्य जो है वो नोट करते हैं यमराज की सभा में बैठकर, उनको उनके पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी है, सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए वहां, बड़े 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 सुपर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत सूक्ष्म रहती है और उसमें कभी वायरस नहीं आता है, क्योंकि यमराज जो है वो 12 महाजन में से एक है। यमदूत कभी कभी गलती कर लेते हैं, कैसे, किसी की आयु समाप्त हो गई तो यमराज भेजते हैं यमदूतों को, जाओ लेकर आओ उसको, उठा के लाओ, अर्थात उसके शरीर में से आत्मा को उठा के लाओ, उसका जजमेंट करना है। तो यमदूत आते हैं, फिर उस मनुष्य के शरीर में से अपने पाश के द्वारा उसके सूक्ष्म शरीर और आत्मा को खींचते हैं। ये जो प्रोसेस है खींचने की, वो और किसी को दिखाई नहीं देती, जो मर रहा है उसको दिखाई दे रहा है, उसको अनुभव हो रहा है, लेकिन आजू बाजू जो वालों खड़े उनको नहीं पता चलता है। यमदूत उसको खींचकर तुरंत उसको अतिवाहिक शरीर से कवर कर देते हैं। यह अतिवाहिक शरीर भौतिक शरीर ही है, लेकिन वो खास करके यातना देने के लिए बनाया गया है, वो इन आंखों से नहीं दिखता। तो यमदूत उसको बाहर निकाल के उनको तुरंत अतिवाहिक शरीर दे देते, फिर उसको पीटना शुरू कर देते हैं, फिर उसको लेकर जाते हैं संयमनी, और संयमनी की दूरी वो बहुत कम समय में तय कर देते हैं, उसको मारते पीटते हुए लेकर जाते हैं। किसको, पापी व्यक्ति को, जिसने बहुत सारे पाप किए हैं जीवन में, ऐसे व्यक्ति को यमदूत मारते मारते लेकर जाते हैं। फिर यमराज की सभा में उसको खड़ा किया जाता है। यमराज के दो रूप हैं, एक उग्र रूप और एक सौम्य रूप। जो उग्र रूप है वो पापी लोगों के लिए है, और सौम्य रूप जिन्होंने धर्म का पालन किया है, पुण्य कर्म किया है, उन लोगों के लिए यमराज के सौम्य रूप धर्मराज कहते हैं। तो ये जो यमराज का उग्र रूप है वो बड़ा भयंकर होता है, यमदूत को देखकर ही वो जो मरा हुआ व्यक्ति है जो जीवात्मा को लेकर जाते हैं वो उसको सहन नहीं कर पाता है, यमदूत के रूप को ही सहन नहीं कर पाता है, इतना भयंकर होता है। और जीवात्मा जब शरीर से बाहर निकलता है तो उसको 1000 बिच्छू काटने की पीड़ा होती है, ये गरुड़ पुराण में वर्णन किया है। एक बिच्छू काटते तो कितना कितना दर्द होता है, 1000 बिच्छू उसको एक साथ काटते इतनी पीड़ा होती है उसको, क्योंकि शरीर के साथ बहुत आसक्ति है। इसलिए यहां लेकर वहां लेकर जाते हैं संयमनी में, फिर वहां उसका जजमेंट होता है। चित्रगुप्त अपना सब हिसाब किताब निकालते हैं, इसने क्या क्या पाप किए हैं, फिर उसका जजमेंट होता है। यमराज उसको यथोचित उसको सेंटेंस देते हैं, उसको सजा देते हैं। भागवतम के 5वें स्कंद में ये बताया है, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित जी को कहते हैं कि पाप की तीव्रता के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार के सजाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के नर्क में उसको जाना पड़ता है। श्रीमद् भागवत पुराण में 5वें स्कंद में ऐसे 28 नरकों का वर्णन किया है, गरुड़ पुराण में और भागवतम में भी बताया है। शुकदेव जी बताते हैं कि वास्तव में नरकों की संख्या हजारों में है, लेकिन मैं तुम्हें केवल 28 नरकों का वर्णन कर रहा हूं, परीक्षित को कहते हूं, और बहुत सारे नरकों का वर्णन आपको गरुड़ पुराण में मिलेगा। तो हमारे पाप की तीव्रता के अनुसार यमराज फिर उस मनुष्य को दंड देते हैं, फिर उसको वहां ले जाया जाता है और चीर काल तक उसको पाप की तीव्रता के अनुसार, यदि कम पाप है तो फिर कम समय के लिए, ज्यादा पाप है तो चीर काल तक उसको वहां नरक में भुगतना पड़ता है, और यदि पुण्यशाली व्यक्ति है तो फिर यमराज उसको स्वर्ग इत्यादि में जाने के लिए स्थान देते हैं, उसको देवदूत लेने के लिए आते हैं पुण्यशाली व्यक्ति को। तो पुण्यशाली व्यक्ति फिर स्वर्ग में जाकर सुख भोगता है। तो इस प्रकार से व्यवस्था है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम, हर रोज बहुत सारे जीवात्मा यमालय जाते हैं। यह हम लोग देख रहे हैं ना, आप सब लोगों ने किसी ना किसी की लाश देखी होगी या सुना होगा कि ये फलाना फलाना मर गया। हम देखते हैं हर रोज पूरी दुनिया में हजारों की संख्या में लोग मरते हैं, जैसे पैदा होते हैं वैसे मरते भी हैं, हजारों की संख्या में लोग मरते हैं, अर्थात वो यमालय जाते हैं और यहां उनका जजमेंट होता है। फिर भी शेषाः स्थावरम् इच्छन्ति, जो बाकी बच गए हैं वो यही रहना चाहते हैं, ऐसा ही ना, शेषाः हम लोग सब बाकी बच गए हैं, हम लोगों की इच्छा क्या है, यहां स्थायी हो जाए, बोलते ना सेटल, सेटल हो जाए, लाइफ में सेटल हो जाना है। अरे लाइफ में कभी कुछ सेटल नहीं होता, कब हम सेटल हो जाए पता नहीं चलता, भौतिक जगत में दुखालय शाश्वतम अशाश्वत है यहां। तो शेषाः स्थावरम् इच्छन्ति, जो बाकी बचे हुए मरने से वो यही स्थायी होना चाहते हैं, ये हकीकत है कि नहीं, हम में से कौन मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, हम लोग ऐसा सोचते बस सब अपना बढ़िया चलता रहे, जीवन कंफर्टेबल सब कुछ चलता रहे, अर्थात यहां शेषाः स्थावरम् इच्छन्ति, यही स्थावर स्टेबल हो जाना चाहते हैं। किम आश्चर्यमतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, मनुष्य देखता है कि हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, यमालय जा रहे हैं, फिर भी जो मरने से बाकी बचे हुए हैं वो यही स्थायी होना चाहते हैं, वो दूसरों की मौत देखकर भी ये नहीं सोचता है कि एक दिन मेरी भी ऐसी मौत आने वाली है और मुझे यमराज की सभा में जाकर जवाब देना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो युधिष्ठिर कह रहे कि ये सबसे अद्भुत चीज है, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो उनके इस वार्तालाप से ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी चलती है दोनों के बीच में, यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में। तो इसके माध्यम से हमें ये याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं शास्त्र के विरुद्ध या शास्त्र विहित, ज्यादातर तो कलयुग में लोग शास्त्र के विरुद्ध काम करते हैं। शास्त्र किसको पता है आजकल, कोई शास्त्र की परवाह करता है क्या, Who cares? कोई शास्त्र की परवाह नहीं करता, जैसा आज सुबह ड्रामा में देखा हमने, शास्त्र की कोई परवाह नहीं करता क्योंकि शिक्षा प्रणाली ऐसी है। तो इन शास्त्र में अकर्म और विकर्म और कर्म की व्याख्या बताई कि करने योग्य कर्म कौन से और नहीं कर्म करने कर्म कौन से, नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म उसको विकर्म कहते हैं। यदि इसका हमें ज्ञान नहीं होता है तो फिर उसका हमें फल भुगतना पड़ता है। काम करते समय हमें सोचना चाहिए कि ये कर्म हम जो कर रहे हैं वो शास्त्रभीत है कि नहीं, शास्त्र में इसको करने के लिए बोला है कि नहीं बोला है। आजकल लोगों का क्या धोरण क्या है, कोई भी करना मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूं या करती हूं, मुझे पसंद है इसलिए, शास्त्र में क्या बोला है उसकी परवाह कोई नहीं करता है ना, मुझे पसंद होना, सब लोग अपना भोग चाहते हैं, भगवान को क्या पसंद है उभार में गया वो सब, मुझे क्या पसंद है ये सब लोग सोचते हैं और उसे उसे प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं। तो ये धर्म को नहीं जानने की वजह से मनुष्य अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और ये धर्म नहीं जानना कोई एक्सक्यूज नहीं है उस उसके परिणाम को भुगतने, यदि हमें धर्म नहीं पता तो भी उसका परिणाम तो भुगतना पड़ता है पाप का। जैसे कोई कोई कार लेकर निकला रोड पर और इंडिया में रूल क्या है लेफ्ट साइड पे चलाने का, वो चलाता है राइट साइड पे तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा उसको है ना और बोलेगा कि तुम गलत चला रहे हो, चलो पेनल्टी भरो पैसा भरो, मेमो फाड़ता हूं अभी। तो वो बोलेगा अरे मुझे तो पता ही नहीं क्या रूल है, तो रूल है कि लेफ्ट साइड पे चलाना, वो चलाता है राइट साइड पे, या ओवरटेक जो करना है वो लेफ्ट साइड से नहीं कर सकते राइट साइड से ओवरटेक, ऐसे सब नियम है ट्रैफिक के, वो नियमों को तोड़ता है तो ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ेगा। उस समय ऐसा जवाब हम देते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो स्वीकार करेगा ट्रैफिक पुलिस, नहीं स्वीकार करेगा, क्यों, क्योंकि तुम व्हीकल लेकर निकले हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि रूल्स क्या है, जस्ट बिकॉज तुम्हें नहीं पता है वो तुम पेनल्टी से नहीं बच सकते, समझ में आ रही बात। उसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन हमें मिला है तो ये मनुष्य जीवन मनुष्य में इस जीवन में कैसे हमें जीना है उसके बहुत सारे नियम हैं। मनुष्य जीवन बहुत उत्तरदायित्व का काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो नहीं पता होना उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस इज नो ब्लिस, पता होना चाहिए कि क्या कर्म है और क्या विकर्म है, वो नहीं पता होने से हम जो विकर्म करते हैं, पाप करते हैं, फिर उसका फल भुगतना पड़ता है। तो मनुष्य जीवन में सबसे पहले हमें धर्म के बारे में पूछा करनी चाहिए, धर्म के बारे में पूछना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यदि ये नहीं पता है तो फिर जैसे धर्मम विना पशु भी समानाम, मनुष्य जो है वो धर्म के बिना पशु के समान है। पशु क्योंकि धर्म होता है, कुत्ता कभी कोई धर्म का पालन करता है या बिल्ली, उसका धर्म क्या है, आ निद्रा भय में तुम, बस उसका वही धर्म है, उसके अलावा उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो उसी के पीछे भागता है। तो मनुष्य भी यदि धर्म का पालन नहीं करता है तो वो भी पशु के समान है, धर्म बिना पशु भी समान है, पशु के समान है धर्म के बिना मनुष्य। इसलिए धर्म हमें पता होना चाहिए। अभी धर्म की व्याख्या लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं करता हूं, सब अच्छा काम करता हूं, बी गुड डू गुड, ऐसा बोलते हैं ना, बस अपने आप में अच्छी चीजें करनी चाहिए, बस उसी को धर्म कहते हैं। कुछ लोग उसको धर्म मानते हैं, कुछ लोग गरीबों को रोटी खिलाना धर्म मानते हैं, कुछ लोग अनाथालय बनाना धर्म मानते हैं, कुछ लोग अपने बॉस को खुश करना धर्म मानते हैं, वो भी धर्म है क्योंकि नौकरी करना तो बॉस को खुश करना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग धर्म होते हैं, धर्म की अलग अलग व्याख्या हो सकती। वर्णाश्रम धर्म, अभी तो वर्णाश्रम धर्म गायब हो गया लेकिन प्राचीन समय में वर्णाश्रम धर्म था, तो ये भी धर्म है। तो ऐसे धर्म की अनेक प्रकार की व्याख्या दी है शास्त्र में। शास्त्र में बताया कि कुएं खुदवाने चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए, विश्राम गृह बनाना चाहिए, ये सब धर्म के अलग अलग बताए हैं कि ऐसे करके धर्म करना चाहिए। ऐसे अनेक धर्म की व्याख्या शास्त्र में की गई। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, महाभारत में इसके बारे में विस्तार से वर्णन है। तो ऐसे बहुत सारे धर्म की व्याख्या बताई गई, लेकिन उसका उसका मापदंड क्या है? इतने सारे धर्म पालन करके भी उसका क्या उद्देश्य है? वो धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं? आप तो धर्म पालन करने का उद्देश्य उसका सिद्ध हो रहा है कि नहीं, वो कैसे समझ में आएगा? उसकी व्याख्या भागवत में बताई कि मनुष्य यदि धर्म का पालन करे तो उसका फल क्या होना चाहिए और उस धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म पालन करने का उद्देश्य क्या है। तो बताया है, धर्म स्वनुष्य न पुंसम विश्वक से न कथा सुया नोत्पादे यदि रतिम समय वही केवल। यदि मनुष्य अनेक धर्म का पालन करता है, वो धर्म का पालन करने के बाद भी यदि विश्वक्सेना, विश्वक्सेना श्रीहरि का एक नाम है, कृष्ण का एक नाम है, तो सब धर्मों का पालन करने के बावजूद भी यदि विश्वक्सेना कथासुय नोत्पादयेत यदि रतिम न उत्पादयेत यदि रतिम, यदि श्रीहरि कथा सुनने में उसको रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, रति उत्पन्न नहीं हुई है, फिर क्या समय एव ही केवलम, उसने जो भी धर्म का पालन किया वो सब क्या हो गया, यूजलेस लेबर, श्रम हो गया, उसका कोई महत्व नहीं। तो जो भी धर्म पालन करते हैं, कुछ लोग व्रत इत्यादि करते हैं, अलग अलग दुर्गा माँ के व्रत करते हैं, शिव जी के व्रत करते हैं, गणपति के व्रत करते हैं, पांच प्रकार के उपासक हैं दुनिया में। कौन कौन से? एक तो हम लोग वैष्णव बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, विष्णु की आराधना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं, शिव जी की आराधना करने वाले शैव कहलाते हैं, दुर्गा की आराधना करने वाले, शक्ति की आराधना करने वाले शाक्त कहलाते हैं, गणपति की आराधना करने वाले गणपत्य कहलाते हैं, और सूर्य की आराधना करने वाले सौर कहलाते हैं। पूरी दुनिया में पांच प्रकार के ही उपासक हैं, मुख्य ये पंचोपासना की विधि है। तो ये सब धर्म का पालन करने के बाद भी यदि मनुष्य को श्री हरि की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है तो समय वही केवल, ये बात समझ लेनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की कथा सुनने में रुचि उसको उत्पन्न होनी चाहिए। ये मापदंड है हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य सिद्ध हुआ कि नहीं, धर्म के पालन का लक्ष्य सिद्ध हुआ कि नहीं, उसका यह मापदंड है। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के व्रत करते हैं, शिव जी के व्रत करते हैं, दुर्गा के व्रत करते हैं, क्या क्या कहते हैं, गुजरात में हमने देखा है, यहां पता नहीं आपकी मराठी कस्टम क्या है लेकिन गुजरात में मैंने देखा है, पागल की तरह वो उस देवी देवता के पीछे व्रत करते हैं, अपने शरीर को सुखा डालते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं पता है क्या है इसका, क्या क्या उसका परिणाम क्या होने वाला है और क्यों करना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं पता है। हकीकत तो यह है कि देवी देवताओं की आराधना करने से, एक्चुअली देवी देवताओं की आराधना करना बहुत बड़ा अभिशाप है। इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। देवी देवताओं की आराधना, उनकी पूजा एक शाप है। यह बात कौन बताता है? कर्ण का तीसरा बेटा जिसका नाम वृषकेतु था। कर्ण के तीन बेटे थे, तीसरा बेटा वृषकेतु अपने बाप जैसा नहीं था, वो वैष्णव था। वृषकेतु बोलता है कि वो अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा लेकर आना था, तो प्रण लेता यदि मैं, यदि इतने दिनों में वो घोड़ा लेकर नहीं आता हूं, फिर बहुत सारे उल्लिस्ट बताता है कि मुझे इस प्रकार से शाप मिले, इस प्रकार से शाप मिले। फिर उसमें एक चीज बताता है वृषकेतु कि यदि मैं युधिष्ठिर महाराज के लिए घोड़ा लेकर नहीं आऊं, तो जिस प्रकार से देवी देवता के उपासकों को इस भौतिक जगत की प्राप्ति होती है, नरक की प्राप्ति होती है, वही गति मेरी है। नरक इन द सेंस, भौतिक जगत एक नरक के समान है, नरक ही है। तो देवी देवताओं की उपासना करने वाले को जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र प्राप्त होता है, वो उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से, संसार चक्र से मुक्त होने के लिए एकमात्र मार्ग है समसिद्धिर हरितोषण। शिव जी भी क्या कहते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु रेवन संशय। मुक्ति केवल विष्णु प्रदान कर सकते और कोई नहीं। कोई भी देवी देवता, आप दुर्गा मैया ले लीजिए, गणपति देव ले लीजिए या सूर्य देव, कोई भी किसी को भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। ब्रह्मा और शिव नहीं कर सकते तो बाकी के देवता की क्या बात करें। भागवत उनके पहले स्कंद में बताया कि हरि विरिंचि हरह, इन तीनों को आप जानते हैं। हरि विरिंचि हर कौन है, कौन है हरि विरिंचि हर? ब्रह्मा विष्णु महेश, हरि श्री कृष्ण विष्णु, विरिंची ब्रह्मा का एक नाम है, हरा शिव जी का नाम है। तो भागवतम में बताया है शुरुआत में ही कि ये तीनों कृष्ण के ही विस्तार है, गुणावतार है, ये तीनों गुणावतार है। ब्रह्मा जी रजगुण के अवतार हैं, शिव जी तमोगुण के और विष्णु सत्वगुण के, तो तीनों कृष्ण के ही विस्तार है। लेकिन फिर भी जो इस संसार में श्रेयस चाहता है, श्रेय माने आत्मकल्याण, अपने आत्मा का कल्याण चाहता है। आत्मा का कल्याण क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होना, यह आत्मा का कल्याण है, उसको श्रेय कहते हैं। तो जो व्यक्ति इसको चाहता है, श्रेय चाहता है, उसको केवल सत्व तमो की आराधना करनी चाहिए। आराधना करने के लिए तो है, शिव जी है, ब्रह्मा भी है, लेकिन जो श्रेय चाहता है उसको सत्व तनु की आराधना करनी चाहिए। सत्व तनु अर्थात विष्णु, तनु अर्थात शरीर, जो सत्वगुण के देव हैं, देवादिदेव, देवताओं के भी, शिव जी के भी स्वामी हैं विष्णु। तो जो व्यक्ति अपना वास्तविक कल्याण चाहता है उसको केवल विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उन विष्णु की आराधना करने से वो जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध होता है। सभी देवी देवता की आराधना उपासना छोड़ देनी चाहिए, उनको प्रणाम करके उनको छोड़ देना चाहिए। सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, गणेश जी का मंदिर आए, शिव जी का मंदिर आए, उनको प्रणाम करना चाहिए मंदिर में जाकर, लेकिन पूजा केवल सत्व तनु अर्थात विष्णु की करनी चाहिए, आराधना केवल विष्णु की करनी चाहिए। तो ये बात, ये नहीं जानने की वजह से इस संसार में जीवात्मा इस अंधकार में भटकता रहता है इधर उधर। ये नॉलेज मिसिंग है, ये ज्ञान मिसिंग है, ये नहीं जानते लोग। और हमारे इंडिया में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे, तो उसमें से अलग अलग, महाराष्ट्र में तो गणपति की बहुत पूजा होती है, लेकिन गणपति खुद किसकी पूजा करते हैं ये पता है आपको? गणपति किसकी पूजा करते हैं? स्वयं नरसिंह देव की पूजा करते हैं। इसलिए तो वो विघ्नहर्ता विघ्न करता है, क्योंकि वो गुण जो है वो उनको नरसिंहदेव से प्राप्त होता है, विघ्नहर्ता का। तो ये देवी देवता भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो भी अल्टीमेटली विष्णु की आराधना करते हैं। इसलिए जो लोग इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, वो इस संसार चक्र में भटकते रहते हैं, उनको भौतिक सुख मिल जाएंगे, इहलोक और परलोक में सुख मिल जाएगा, बहुत बड़े बंगलों बनाएंगे, फैक्ट्री के मालिक हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, बहुत सारी स्त्रियां मिल जाएगी भोग करने के लिए, स्वर्ग लोक में जाएंगे, ये सब सुख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये सब जो सुख जो है वो वास्तव में जैसे वृष केतु कह रहा है ये अभिशाप है, ये दिख रहा है सुख लेकिन वास्तव में इससे क्या हो रहा है, संसार चक्र और चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, बढ़ रहा है आगे, भवरोग और बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, इसलिए यह अभिशाप है। इसलिए बुद्धिशाली व्यक्ति इस भवरोग से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है। और ये रोग है तो रोग से मुक्त होने के लिए फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। भवरोग हम सबको क्या हुआ है, भवरोग हुआ है, भवमान है संसार चक्र। तो रोगी व्यक्ति के अपने लक्षण होते हैं, जैसे अमीर व्यक्ति के अपने लक्षण है, गरीब व्यक्ति के अपने लक्षण है, उसी प्रकार से रोगी के अपने लक्षण होते हैं। वो लक्षण से वो पता चलता है डॉक्टर को इसको फलाना फलाना रोग होगा, फिर उसको लेबोरेटरी टेस्ट करके वो रूल आउट करता है और एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आता है कि उसका रोग है। उसी प्रकार से रोगी व्यक्ति के जैसे लक्षण होते हैं, उसी प्रकार से इस जगत में जो लोग भव रोग से पीड़ित हैं उनके भी लक्षण हैं। वो लक्षण है, मुख्य लक्षण शोक मोह और भय। जो भवरोग से पीड़ित है उनके लक्षण क्या है, शोक मोह और भय। शोक अर्थात कोई चीज हमारे हाथ से चली जाती है तो हम रोने लगते हैं, कोई हमारा स्वजन मर जाता है या कोई कीमती चीज गंवा बैठते हैं हम लोग तो रोने लगते हैं, शोक करते हैं उसका। मोह मोहित हो जाते हैं, पुरुष स्त्री से, स्त्री से स्त्री पुरुष से मोहित हो जाता है, भय भयभीत हो जाते हैं लोग। ये तीन जो है ये भवरोग से पीड़ित होने वाले लोगों के लक्षण है, भवरोग के लक्षण है ये। तो जब रोग होता है डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर दो चीज देता है, प्रिस्क्रिप्शन एंड रिस्ट्रिक्शन। डॉक्टर क्या देता है, प्रिस्क्रिप्शन एंड रिस्ट्रिक्शन। भवरोग के लिए, भवरोग के लिए क्या उपाय देता है वो, आपको पहले रिस्ट्रिक्शन दे देगा, रिस्ट्रिक्शन को प्रोस्क्रिप्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। नहीं तो रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है, प्रोस्क्रिप्शन में कि भाई तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी है, डोंट्स डूज एंड डोंट्स, इतनी चीजें तुम्हें नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि उतनी चीजें यदि वो करेगा तो उसका भवरोग और आगे बढ़ेगा, उसका रोग आगे बढ़ेगा। जैसे किसी को कार्डियक प्रॉब्लम्स है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं कि तुम वाइन मत पियो और रेड मीट मत खाओ, मीट खाना बंद कर दो और दारू पीना बंद कर दो, उसको सलाह, क्योंकि उससे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और प्रॉब्लम। डोंट्स, ये चीज में नहीं करनी है, डोंट्स, क्योंकि ऐसा वो यदि तुम करोगे तो तुम्हारा रोग और आगे बढ़ेगा। तो पेशेंट उसको फॉलो करना शुरू कर देता है तो उसका जो रोग आगे, जो डिजीज प्रोग्रेशन जो था वो रुक जाता है, समझ में, उसका जो रोग जो आगे बढ़ रहा था वो रुक जाता है। कब, जब वो प्रोस्क्रिप्शन को फॉलो करता है, वो डोंट्स को फॉलो करता है, उतनी चीज से वो दूर रहता है तो उसका रोग वहां रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। फिर जो रोग आगे बढ़ चुका है उसको रिवर्स भी तो करना पड़ेगा, उसको क्योर भी तो करना पड़ेगा, उसके डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है, आरएक्स प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां देता है। क्या डूज, के क्यूडी बीआईडी या टीआईडी, ये दवाई दो दिन में एक बार दो बार तीन बार, मेडिकल लैंग्वेज में प्रीप्रैंडियल पोस्टप्रैंडियल, प्रीप्रैंडियल मान लंच से पहले, लंच और डिनर से पहले, पोस्टप्रैंडियल लंच और डिनर के बाद, वो दवाई लिख कर देता है, मतलब जो करना है वो, उसको डूज बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन देगा कि तुम हर रोज इतना माइल चलो या नहीं चलो अकॉर्डिंग टू द डिजीज जो भी है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो इत्यादि। तो ये सब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन देता है, उससे क्या होता है, उसका जो ये फॉलो करने से उसका जो रोग आगे बढ़ चुका है वो रिवर्स हो जाएगा, वो क्योर हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे शास्त्र में एग्जैक्टली इन एन आइडेंटिकल वे हमारे शास्त्र में भी प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रोस्क्रिप्शन दिया है, डूज एंड डोंट्स। हमारे लिए प्रोस्क्रिप्शन क्या है, मुख्य चार प्रोस्क्रिप्शन है हमारे लिए जो नहीं करना है, क्या, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का व्यसन, फिर व्यभिचार, पर पुरुष गमन या पर स्त्री गमन, फिर जुआ खेलना और मांस खाना, तो ये हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन है, इसको नहीं करना चाहिए। ये फॉलो करने से क्या होता है, भवरोग हमारा आगे बढ़ने से रुक जाएगा, क्योंकि पाप नहीं कर रहा है। ये चार पाप से बाकी सब पाप पैदा होते हैं, ये चार मुख्य पाप हैं, सभी पाप इसी से पैदा होते हैं। यदि कोई मनुष्य इन चार को फॉलो करना शुरू कर देता है तो वो इमीडिएटली पाप उसका रुक जाता है, उसका भवरोग रुक जाएगा वहां। लेकिन फिर उसको जो भवरोग उसका आगे बढ़ चुका है, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दवाई भी तो देना, उसको लेनी पड़ेगी दवाई। तो अलग अलग युग में अलग अलग दवाइयां थी। कलयुग में हमारे पास दवाई क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नाम रसायन, इसको नाम रसायन कहते हैं, बुक भी आपकी मराठी में नाम रसायन, उसमें बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग हैं, नाम रसायन, कृष्ण रसायन नाम बुक का नाम है, रसायन ये दवाई नहीं है। तो ये लेने से इसको, अभी डॉक्टर ने जो दवाई जो देता है उसको रेगुलेटर डे में लेना पड़ता है ना, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें इतनी टैबलेट दिन में लेनी है, ये समय पे खाली पेट या भरे खाना खाने के बाद एक्सेट्रा, मतलब उसमें कुछ रेगुलेशन, कुछ नियम है। उसी प्रकार से ये दवाई लेने में भी नियम है, कम से कम 16 माला जप करो, ये नियम। तो ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन हुआ, वो लेने से क्या होता है, हमारा भवरोग से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ये नाम रसायन का सेवन करने से नियमित रूप से संख्यापूर्वक उसको कम से कम दिन में 16 माला जप करना, प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग, सुबह करना ज्यादा अच्छा है, वो करने से हमारा भवरोग, हम लोग भवरोग से मुक्त हो जाते हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्शन एंड रिस्ट्रिक्शन। तो ये मंत्र भी कौन सा है, ये महामंत्र, इसको महामंत्र कहते हैं, जो कलि संतरण उपनिषद में दिया गया है, ब्रह्मा नारायण मुनि को बताते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम्नाम् कलिकल्मषनाशनम् नाथ परतरुपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, इति षोडकला इति षोडशकला वित्तस्य जीवस्य वर्ण विनाशनम् तथा प्रकाशरे परब्रह्म मेघापायुरविष्णु मंडली वेति। इन दो मंत्र में उसकी महिमा बताते हैं, एक्चुअली उसके बाद वाले मंत्र भी महिमा बताते हैं महामंत्र की, लेकिन ये दो मंत्र में खास करके कि इति षोडशकम् नाम्नाम् कलिकल्मषनाशनम्, ये 16 नाम वाला जो महामंत्र है वो कलयुग के सभी कलमश को नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। इति षोडश नाम कली कलमश नाशनम नात परतरुपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैंने सभी वेदों को भलीभांति देख लिया है, उसका चप्पे चप्पा कोने कोना मैंने देख लिया है, मैंने अच्छी तरह से वेद को अध्ययन कर लिया है, ये महामंत्र के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता। जब सृष्टि का सृजन हुआ था तो सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को वेद सिखाया था, ब्रह्मा जी से अच्छा वेद कोई नहीं जानता है। तो ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि सभी वेदों में मैंने नातक परतर उपाय सर्व वेदे सुदृश्यते, मैंने अच्छी तरह से देख लिया, सभी वेदों में अच्छी तरह से देख लिया, इससे बेहतर उपाय और कोई दृष्टिगोचर नहीं होता है महामंत्र के अतिरिक्त। फिर आगे बताते हैं आगे के मंत्र में उसकी महिमा, इति षोडश कला वृत्तस्य जीवस्य आवरण विनाशनम, जीवात्मा के ऊपर माया के 16 कला का आवरण है, वो सांख्य योग में वर्णन किया उसका। हम सब लोग जो है जीवात्मा, तो हम लोग ये इस प्रपंच से अभी अच्छन्न हो गए, मतलब कवर हो गए, मोहित हो गए, जो रियालिटी वो देख ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे ऊपर माया का 16 कला का आवरण है। तो इस महामंत्र जिसमें कितने नाम है, 16 नाम है, इन 16 नाम से माया के इस 16 कलाओं वाला जो आवरण है उसका भेदन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। इति षोडश कला वृत्तस्य जीवस्य वर्ण विनाशनम, ये 16 कलाओं वाला जो आवरण है जीवात्मा के ऊपर वो नष्ट हो जाता है महामंत्र से। फिर उसके बाद क्या होता है, तथा प्रकाशरे परब्रह्म मेघापाय रवि मंडली वेति, जिस प्रकार से बादल के हट जाने से आकाशमंडल में सूर्यदेव अपनी रश्मियों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, बादल जब होते हैं तो सूर्य नहीं दिखाई देते, लेकिन बादल के हट जाने से सूर्य और सूर्य प्रकाश स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो जिस प्रकार से सूर्यदेव स्पष्ट दिखाई देते हैं बादल के हट जाने से, उसी प्रकार से इस महामंत्र के जप से जब जीवात्मा का आवरण, जब माया का आवरण नष्ट हो जाता है, तो परब्रह्म श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तथा प्रकाशरे परब्रह्म मेघापायर वृष्णि मंडली वेदी। तो इस महामंत्र के प्रभाव से हम लोग श्री कृष्ण को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उनकी शक्तियों के साथ, भौतिक और आध्यात्मिक सभी शक्तियों के साथ उनको देख सकते हैं। यह जीवन का परम लक्ष्य है। और इन नामों का जप करने में हमारी रुचि है कि नहीं, वो जितने भी हमने जीवन में कर्म किए हैं या धर्म का पालन किया है, उसका टेस्ट यह है, यह उसका मापदंड है कि मुझे भगवान के नाम जप करने में रुचि है कि नहीं, उनकी कथा सुनने में रुचि है कि नहीं, इनके रूप का दर्शन करने में, उसके बारे में सुनने, उनके गुण के बारे में सुनने में रुचि है कि नहीं। नाम रूप गुण लीला पार्षद धाम, यह सब के बारे में श्रवण करने में रुचि है कि नहीं, ये मापदंड है मेरे प्रगति का। यह मापदंड है प्रगति का। मापदंड ये नहीं कि मैंने कितने रुपए बनाए या कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया, वो मापदंड नहीं है मनुष्य जीवन का, वो प्रोग्रेस नहीं, वो प्रगति नहीं है। प्रगति है कि मनुष्य को भगवान की कथा सुनने में रुचि है कि नहीं, वो मापदंड है। यदि वो नहीं है तो समय वही केवलम, यदि उसको भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं है तो उसका जितना भी उसने सब काम किया वो सब विफल है। समय वही केवल, तो ये बात को समझना है। और धर्म की, परम धर्म की और भी व्याख्या की है, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रघोक्षज आहेतु की अपने प्रियता यजात्मा सुप्रसीदति। हम सब लोग हमारी खुद की प्रसन्नता चाहते हैं ना, आत्मा की, हम लोग सब सुखी होना चाहते हैं, तृप्त होना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं, और उसी के लिए सब प्रयत्न कर रहे हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है ताकि अच्छी नौकरी मिले, ताकि अच्छी छोकरी मिले, फिर शादी करे, बच्चे पैदा करे, लाइफ में स्टेबल सेटल हो जाए, तृप्त होने के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए अपने आप को, ताकि वो तसल्ली, उसको संतुष्टि मिल जाए जीवन में। भरपेट खाता है कि वो संतुष्ट होने के लिए ऐसा क्या। अर्थात हर एक व्यक्ति अपने खुद की तृप्ति चाहता है, प्रसन्न होना चाहता है, खुश होना चाहता है, लेकिन वो उसके सब प्रयत्न विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य का परम धर्म का पालन नहीं किया। मनुष्य का परम धर्म यह है, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। अदोक्षज श्री कृष्ण का एक नाम है। तो मनुष्य का परम धर्म है उन अदोक्षज के चरणों में आहेतु की अप्रतिहता, आहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसीदति। आहेतु की अर्थात बिना किसी उद्देश्य के, कोई उसका कोई कारण नहीं है, कोई उसको चाहिए, भगवान से कुछ बदले में कुछ चाहिए नहीं उसको, जैसे गोपियां, जैसे गोप बाब, जैसे नंद बाबा, जशोदा माई, इन लोगों को भगवान से बदले में कुछ चाहिए नहीं था। आहेतु की, इसको आहेतु की भक्ति बोलते हैं। अप्रतिहता, किसी भी अवस्था में वो भक्ति रुकती नहीं है। उदाहरण प्रहलाद महाराज, प्रहलाद को तो कितनी पीड़ा दी हिरण्यकशिपु ने, और भी उदाहरण है दूसरे, फिर भी उनकी भक्ति कभी रुकी नहीं, उसको अप्रतिहता कहते हैं। तो मनुष्य का यह परम धर्म है कि उन अधोक्षज की वो आहेतु की अप्रतिहता भक्ति करें। उससे क्या होता है, यजात्मा सुप्रसीदति, उससे आत्मा को पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो अमृत का आस्वादन कर सकता है, वो तृप्त हो जाता है, उसको किसी चीज की कमी नहीं लगती है। फिर उसके पास पैसा है नहीं है, उस शरीर बूढ़ा है कि जवान है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर पहुंच गया। उसको जब आत्मा की पूरी प्रसन्नता प्राप्त होती है तो वो जीवन का सफल है, वो जीवन उसका सफल हो गया। लेकिन वो चीज संभव है केवल श्री कृष्ण की पूरी शरणागति लेने से और उनकी आहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करने से संभव है। नहीं तो जीवन में कितने भी प्रयास कर लो, मनुष्य किसी प्रकार से तृप्त नहीं होता है। कितना भी प्रयत्न कर लो आप, अलग अलग प्रकार से प्रयत्न, भौतिक रूप से या और भी किसी भी प्रकार से प्रयत्न करें, कितने भी पुण्य कर्म करें, जब तक वो श्री कृष्ण की आहेतु की अप्रतिहता भक्ति नहीं करता है, मिश्र भक्ति से भी पूर्ण तृप्ति प्राप्त नहीं होती। जैसे हम लोग साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हमें आत्मा की प्रसन्नता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे भौतिक उद्देश्य रहते हैं, कुछ न कुछ कारण रहते हैं, उस कारण से हम लोग भगवान की प्रसन्नता तो साइड पे हम खुद का भोग करते हैं, भगवान की भक्ति की आड़ में खुद का भोग वो मिश्र भक्ति है, उसकी वजह से आत्मा को पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है भगवान की भक्ति करने के बावजूद। क्यों? क्योंकि वो अहेतु की नहीं, इसलिए ये जो व्याख्या है परमधर्म की व्याख्या बताया अहेतु की या प्रतिहता, तो वो करने से ही आत्मा को पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होती है। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी डालने से उसके पर्ण में और शाखा उपशाखा में सब पानी पहुंच जाता है ना, उतृप्त हो जाता है पूरा पेड़, उसी प्रकार से श्री कृष्ण को उनकी सेवा करने से हम खुद भी संतुष्ट हो जाते हैं। ये रहस्य है, ये खुश होने का यही रहस्य है और यही प्रगति का मापदंड है। मनुष्य इलेक्ट्रिसिटी में है कि जलाता है लाइट, ट्यूबलाइट जलाता है कि दिया जलाता है, वो प्रगति का धोरण नहीं है, वो प्रगति का, वो हमारे शास्त्र में उसको प्रगति का धोरण नहीं माना गया। आज लोगों ने क्या किया, पहले दिए जलते थे, आपके शायद माता पिता या आपके दादा दादी गांव में, तो अभी भी शायद कुछ जगह पे ऐसा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या करते हैं लोग, दिया जलाते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं। और फिर ये इसको पैदा करने के लिए कितनी मुसीबत है आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मुसीबत होती है, आप इंजीनियर को जाकर पूछना, वो अलग अलग प्रकार से ये पैदा करते हैं, जैसे वो डैम बनाते हैं, नदी में डैम बनाते हैं, फिर वो पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, फिर वहां नीचे टर्बाइन फिक्स करते हैं, वो पानी गिरेगा तो टर्बाइन जो है फिर वो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को, फिर वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बताने कौन सी, उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो कितने सारे उसमें मशीन, कितने सारे आदमी लगाने पड़ते हैं, कितनी सारी मुसीबत है उसमें। तो थोड़ा सा प्रकाश चाहिए, जब सूर्यदेव नहीं है तब थोड़ा सा प्रकाश चाहिए तो दिया काफी है, उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। और समय बचाकर मनुष्य का जो परम धर्म है उसको पालन करना चाहिए। तो हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा, आजकल लोग वो प्रगति का मापदंड बन गया है कि कितना टन हमने, मेगा टन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, स्टील प्रोड्यूस किया, या इतना टर्नओवर किया कंपनी ने। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये प्रगति का मापदंड नहीं है, ये अधोगति का मार्ग है। इससे क्या हो रहा है, लोग धर्म से भगवान से दूर जा रहे हैं, ये अधोगति है, ये प्रगति नहीं, ये अवगति है। वास्तविक प्रगति के मनुष्य को भगवान की कथा सुनने में रुचि कितनी प्राप्त हुई, क्योंकि ये जीवन का रहस्य है, ये मनुष्य जीवन का रहस्य है। यदि भगवान की कथा सुनने में उसकी रुचि है, वो जैसे किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के बारे में कुछ भी बहुत ज्यादा रुचि होती है तो अपने आप खींचा चला जाता है उसकी उस दिशा में, है ना, और कहीं ना कहीं से रास्ता निकाले उसको प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से जो भगवान का प्रेमी होता है वो कैसे भी करके रास्ता निकाल लेता है भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। और यदि कोई कथा कह रहा है तो अपने आप वहां पहुंच जाता है। उसकी जिस प्रकार से नदियां, नदी स्वाभाविक रूप से समुद्र की तरफ बहती है स्वाभाविक रूप से, उसी प्रकार से भगवान का जो भक्त होता है उसका स्वाभाविक रति होती है भगवान की कथा में, स्वाभाविक रुचि होती है, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, उसको वही अच्छा लगता है। तो हम लोगों को भी भव रोग हुआ तो जैसे पीलिया होता है जॉन्डिस, तो जॉन्डिस वाले व्यक्ति को क्या होता है, उसको गन्ना अच्छा नहीं लगता है, गन्ने को क्या बोलते मराठी में, तो शुगर केन, तो वो मीठा नहीं लगता है जिसको पीलिया होता है। लेकिन उसके लिए ट्रेडिशनली उपाय वही है कि वो गन्ने का जूस पिए, वो पीता रहेगा तो फिर उसको वो मीठा लगने लगेगा। एक पहले कड़वा लगता था पीलिया की वजह से, जॉन्डिस की वजह से कड़वा लगता था, लेकिन यदि वो पीता रहेगा तो धीरे धीरे वही रस उसको मीठा लगने लगेगा। उसी प्रकार से भगवान की कथा हम लोगों को, चूंकि अभी भवरोग हुआ है इसलिए कथा सुनने में क्या होता है, आधा घंटा बस, आधे घंटे में तो फिर लोग हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, मोबाइल निकलने शुरू हो जाते हैं जेब में से, फिर मोबाइल में क्या क्या करते हैं पता नहीं, टाइम देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं है। यदि वो मूवी चल रहा है मूवी हॉल में, तीन घंटा भी पता नहीं कैसे खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। वो राज कपूर का मूवी था संगम, साढ़े चार घंटे का मूवी था, किसी ने देखी है संगम मूवी राज कपूर की? नहीं देखी। उसमें दो दो इंटरवल होते थे, तो वो मूवी में 4.5 घंटे कैसे खत्म हो गए पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि रति है उसमें, उसमें रुचि है। लेकिन भगवान की कथा आधा घंटा पौना घंटा हो गया तो लोग हिल्ला डुल्ला शुरू कर देते हैं, कब खत्म होगा ये प्रसाद, प्रसाद कब शुरू होगा? क्यों? क्योंकि रुचि नहीं। शिवगुरु गोस्वामी ने लगातार 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुनाई, हरि कथा सुनाई। परीक्षित इतने उसमें डूब गए थे कि उनको भूख प्यास का पता नहीं चला। 7 दिन बीत गए, परीक्षित महाराज उठे तक नहीं, ना ही उनको भूख लगी ना ही प्यास लगी, वो पूरी शारीरिक चेतना से परे चले गए। तो ऐसी रति, ऐसी रति तो पता नहीं कब प्राप्त होगी हमें। हम 2 घंटा भी कथा सुन ले तो ठीक है, कुछ वो भी ध्यान लगा के इंटरेस्ट से रुचि से, तो फिर वो समझना चाहे कि हमारी प्रगति हो रही है। ये प्रगति का मापदंड है। और बाकी की जितनी भी सेवाएं, जो लोग साधक लोग हैं, जितनी भी सेवाएं हैं भगवान की हम करते हैं, उसकी नींव यहां है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अच्छी क्वालिटी, प्रभुपाद जी कहते वन शुड हियर सफिशियंटली एंड प्रॉपरली, भगवान की कथा का श्रवण, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, दो चीज बता रहे, दो शब्द, सफिशियंटली एंड प्रॉपरली। सफिशियंटली इंडिकेट्स क्वांटिटी। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान की कथा पर्याप्त मात्रा में सुननी चाहिए, सफिशियंटली अर्थात वो मात्रा बताता है, सफिशियंटली माने मात्रा, क्वांटिटी, सफिशियंटली एंड प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब अच्छी गुणवत्ता, दैट इंडिकेट्स क्वालिटी। तो भगवान की कथा हमें सफिशियंटली और प्रॉपरली सुननी चाहिए, अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में, अच्छी मात्रा में, मात्रा में और गुणवत्ता में, दोनों में। और यदि ये नहीं करते हैं तो बाकी की सेवा इतनी हमारी, उसमें हम लोग ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे और उसमें निपुणता भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी सेवा करने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी का श्रवण करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए, इससे बाकी की सेवा करने की शक्ति मिलती है और उसी में शुद्धता आती है, बाकी की सेवा में शुद्धता आएगी फिर। तो ये नींव है आध्यात्मिक जीवन की, ये नींव है मनुष्य जीवन। रामानुजाचार्य क्या बताते हैं, वो कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति एकदम बेकार है, कोई मनुष्य बेकार है, उसका जीवन का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है, ऐसे व्यक्ति को यदि अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाना है उसको क्या करना चाहिए, उसको जाकर केवल साधुओं के बीच में बैठ जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है ना, कुछ लोग हम देखते हैं रास्ते भर घूमते हैं, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है, ऐसे घूम रहे हैं इधर उधर। और हम लोग भी कई बार, मेरे फूफा है बॉम्बे में, थाने में रहते हैं, वो कई बार कंप्लेन कर चुके हैं मुझे, बोले मुझे बहुत डिप्रेशन आता है, अकारण, कोई कारण नहीं है, ऐसे डिप्रेशन आता है। उनका उनका एक बेटा है, एक बेटी है, बेटा अच्छा कमाता है, रिसेंटली शादी हुई, बेटी दुबई में है, अच्छा कमाती है, शादी हो गई उसकी भी, कोई कारण नहीं है डिप्रेशन का, लेकिन बस मुझे ऐसे डिप्रेशन आता है, बोले जीवन एकदम खाली लगता है, व्यर्थ लगता है। इसी से पता चलता है क्यों व्यर्थ लग रहा है उसको, आत्मा की प्रसिद्धि क्यों नहीं है, क्योंकि उसने हरि भजन नहीं किया जीवन में, इसलिए उसको खालीपन लग रहा है। तो ऐसे यदि किसी को लगता है कि मेरा जीवन बेकार है, और कोई भी मनुष्य ऐसा है जो सही में बेकार, वो कुछ नहीं कर सकता, भौतिक या आध्यात्मिक तौर पर कुछ नहीं कर सकता, वो निरर्थक है उसका जीवन, उसको क्या करना चाहिए अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाने के लिए, साधुओं के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए बस, और अपने कान खोल देने चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि साधु लोग हमेशा क्या करते हैं, साधु लोग हरि भजन करते हैं, और क्या करते हैं साधुओं का और धंधा क्या है, मुझे और कोई धंधा नहीं है, मैं कथा सुनाता रहता हूं लोगों को, यही मेरा धंधा है, धंधा नहीं है, ये मेरी सेवा है। तो साधु लोग क्या करते हैं, भजन करते हैं भगवान का, तो उनके मुखारविंद से जब हम कथा सुनते रहते हैं उसी से हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। वो मनुष्य बेहतर है बाकी करोड़ों लोगों से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव, वो कहते हैं कि एक मनुष्य ऐसा है जो फटे हुए कपड़े पहन के आता है, जिसका जीवन का कोई मतलब नहीं है, वो आकर श्री कृष्ण के मंदिर में घंटी बजाता है भगवान के लिए। वो मनुष्य, वो फटे हुए कपड़े वाला गरीब अनपढ़ गवार, वो मनुष्य जो श्री कृष्ण के मंदिर में आकर उनके लिए घंटी बजाता है, वो मनुष्य इस दुनिया के करोड़ों लोग जो बहुत बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं और लोगों का बहुत उपकार कर रहे हैं, अनाथालय बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, उन लोगों से ये व्यक्ति बेहतर है, फार बेटर, क्योंकि उस वो जीवन का परम उद्देश्य समझ गया, परम लक्ष्य के पास आ गया वो। तो अल्टीमेटली ये हमारे ये प्रगति का मापदंड है, हम लोग प्रगति के मनुष्य जीवन हमारा सफल हो रहा है कि नहीं, उसका उसकी जो उसका जो मापदंड है वो ये है कि हमारी हरि कथा में रुचि कितनी है। यदि वो हमने प्राप्त कर लिया, उसके बाद सब सेवा एकदम फटाफट बहुत बढ़िया चलती है और सभी काम बहुत अच्छे से होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगतं यन्माम् उपयान्ति। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जो मनुष्य मेरा सतत भजन करता है उसको मैं बुद्धियोग देता हूं ताकि वो मुझे जल्दी प्राप्त कर सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत में तात्पर्य में कि जब भगवान देखते हैं कि कोई उनका भक्त कोई साधक उनकी कथा सुनने में बहुत आतुर रहता है, बहुत लालायित रहता है, जैसे लोभी व्यक्ति जो होता है, आप लोगों ने लोभी लोग देखे हैं कभी? मैंने देखे हैं, एक नमूना मैंने देखा था बड़ौड़ा में, वो पैसे का इतना भयंकर लोभ उसको कि कुछ भी करने के लिए तैयार था, वो दिन रात एक करके पैसे कमाने का प्रयत्न करता था, उसको इतना लालच था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान देखते हैं कि उनके कोई भक्त को कोई साधक को इतनी आतुरता होती है किसमें, उनकी कथा सुनने में, उसको भगवान की कथा सुनने के लिए लोभ है, तो भगवान उसको, भगवान सभी के दिल में है ना, सभी के हृदय में है भगवान परमात्मा के रूप में, तो उसको अंदर से ऐसा ज्ञान देते हैं कि उसके जीवन में जितने भी अड़चने होती है वो सब खत्म हो जाती है, अर्थात वो अड़चन उससे यदि है तो भी उसमें से वो बाहर आ जाता है, उससे प्रभावित नहीं होता है और सरलता से वो भगवान के पास पहुंच जाता है। भगवान के पास पहुंचने का जो उसका मार्ग है एकदम सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, भगवान सब मार्ग उसके लिए खोल देते हैं, सरलता से वो भगवान के पास चला जाता है और जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। लेकिन कौन, जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने में बहुत आतुर होता है, बहुत ईगरनेस से, बहुत आतुरता से सुनता है कथा, ये दोनों कान वो भगवान की कथा को दे देता है हमेशा के लिए, तो ये मार्ग सरल है, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है। भगवान की कथा सुनना जो साधु लोग हैं, वो साधु मतलब वास्तविक साधु, साधु किसको बोलते हैं, जो असत्य और सत्य में से सत्य निकाल कर ले लेता है, वन हु कैन डिस्टिंग्विश रियलिटी फ्रॉम इल्यूजन, वो असत्य में से सत्य को निकाल लेता है और दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, उसको साधु कहते हैं। और दूसरों के जो अवगुण है, जो दोष है उसको काटता है, उनके जो भ्रमणा है उसको काटता है, उसको साधु कहते हैं। ऐसे साधु से यदि हरि कथा का श्रवण हम करते हैं आतुरता से, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे भगवान के धाम में जाने का मार्ग सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, ये जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। कोई है प्रश्न? तो आज रामनवमी है, तो हमारे पास वाल्मीकि रामायण है, वो भी राम कथा है। यदि आपके पास नहीं है तो खरीदिए प्लीज, राम जी की कथा दिव्य है, उनकी लीलाएं दिव्य है, उसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। और यदि आपके पास है तो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को भेज सकते, दे सकते हैं।
तो मैं कुछ और पूछना चाहता
हूं।
हां, अगर एक व्यक्ति अभी माया उसका पड़ी, उसने उसकी जो आत्मा निकल गया,
हाँ,
तो वो जो जी नहीं है,
हाँ,
उसको जादू दिया,
हाँ,
और मुझे पूरा भक्ति है नहीं,
अच्छा,
उसका बेटा आदि उसने चालू किया,
फायदा उसको होगा, लेकिन उसको एंश्योर करने के लिए नियमित रूप से वहां कीर्तन होना चाहिए। उनका जो बेटा, उनका बेटा है ना, वो जो अभी भक्ति शुरू किया है, पुत्र, पुत्र की व्याख्या क्या है, पुत्र किसको बोलते हैं, जो अपने बाप को पुत्र नामक नरक से बचाए उसको पुत्र कहते हैं, उसका कर्तव्य है, ही सपोज टू डू दैट, वो अपने बाप पर उपकार नहीं कर रहा है, बाप के ऊपर वो उसका कर्तव्य है, ही सपोज टू डू दैट, कि वो हरि भजन करके अपने घर में कीर्तन इत्यादि करके अपने बाप का उद्धार करे, वो उसका कर्तव्य है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि पुत्र और मूत्र दोनों एक ही स्थान से निकलते हैं, पुरुष की जननेन्द्रिय, लेकिन पुत्र और मूत्र, पुत्र और मूत्र, पुत्र वीर्य रूप में निकलता है, मूत्र पुत्र और मूत्र दोनों जन पुरुष के जननेंद्रिय से निकलते हैं। तो चाणक्य कह रहे हैं कि पुत्र और मूत्र एक ही स्थान से निकलते हैं, लेकिन यदि पुत्र अपने पिता का उद्धार नहीं करता है तो मूत्र के समान, तो उसका उसको नियमित रूप से करना चाहिए। हाँ देखिए, भगवान का नाम एक अमोघ शस्त्र है, अमोघ शस्त्र जो कभी फेल नहीं होता है। आप किसी के भी सामने जाकर हरि नाम का जप करोगे उसके कान में पड़ेगा, उसको फायदा तो होने ही वाला है। अभी क्या है, ये यथा प्रपदे ताम शत्रु बजामी हम, अभी वो कर्मी है पापी है तो आप उससे शुद्ध भाव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फायदा होने वाला है। उसके कान में शब्द पड़ेंगे, भगवान का नाम पड़ेंगे तो उसको फायदा जरूर होने वाला है। जहां तक मैं समझता हूं उसको एटलीस्ट मनुष्य शरीर मिल जाएगा, उतना तो जरूर फायदा होगा, लेकिन उसको बार बार करते रहना चाहिए। तो पहले वालों के केस आपने बताया, उस व्यक्ति को अपने घर में बार बार कीर्तन करवाते रहना चाहिए, खुद भी करना चाहिए, और उसको ईयरली श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कलयुग में श्राद्ध की विधि इसी प्रकार से है कि भक्तों को बुला के कीर्तन कराना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए और कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए भक्तों को। वो ऐसा करेगा ना तो उनके पिताजी की ऊर्ध्वगति होगी निश्चित रूप से। भगवान का नाम एक अमोघ शस्त्र, कभी फेल नहीं जाता है। और यदि कोई मरने वाला है तो फिर उसके लिए भी यही उपाय कर सकते हैं। हॉस्पिटल में तो कीर्तन वगैरह अलाउ करते नहीं है। मेरे फादर के लिए, उनको कैंसर हुआ था, आईसीयू में रखा था, मुझे पता था कि डॉक्टर बोला 6 महीने। मैंने बोला डॉक्टर बेकार की बात मत करो, वो 1 महीना भी नहीं जीने वाला है, मुझे पता था। तो हम लोगों ने परमिशन मांगी कि थोड़ा कीर्तन वगैरह, बोले कीर्तन हम लोग आईसीयू वगैरह हॉस्पिटल में अलाउ नहीं करते हम लोग। फिर एक रख दिया था, वो अपना मशीन होता है ना, आपके माता जी के घर पे बजता रहता है नीचे, ऐसा कुछ रख दिया उनके पास। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, यदि घर पे है तो फिर खूब कीर्तन करिए, और यदि मरने वाला पक्का है तो फिर हॉस्पिटल में रखने का कोई पर्पज नहीं है, कोई मतलब नहीं, उसको घर पे ही लेकर आओ। मैंने डॉक्टर को बोल ही दिया था मेरे पापा के लिए, मेरे पापा ने भी ऐसे बोला मैं हॉस्पिटल में नहीं मरूंगा, घर पे मरूंगा। डॉक्टर को बोल दिया था, देखो जब भी लगे कि लास्ट दिन है मुझे फोन करके बता देना, क्योंकि मैं और मेरी मदर टांग लेते थे रात में सोने के हॉस्पिटल में। तो मेरा टांग, मेरी मदर का टांग था, तो सुबह सुबह फोन आया डॉक्टर का कि आप बात खत्म हो गई, अब ले जाओ। मैं लेकर आया घर पे, सब नलियां सब निकाल दी, उनको फ्री कर दिया एकदम, और जोर शोर से कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही उनकी मृत्यु होगी, तो वो सबसे अच्छा है। यदि भगवान का नाम सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से वो उसका, उसकी ऊर्ध्वगति होने वाली है।